नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाले विचार पर चर्चा कर रहे हैं। ये पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक उद्बोधन से है, जिसका शीर्षक है खिलौनों ने अध्यात्म का सत्यानाश कर दिया।
जी,
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि खिलौने और अध्यात्म का सत्यानाश।
बिल्कुल, और देखिए यही इस संबोधन का मूल विचार है। ये उन्होंने सामान्य भारतीय नागरिकों को ध्यान में रखकर कहा था। मतलब आचार्य जी का कहना था कि कैसे धर्म के नाम पर जो कुछ सतही चीजें होती हैं या हमारी गलत प्राथमिकताएं, वो हमें अध्यात्म के असली सार से दूर ले गई हैं।
अच्छा,
जैसे किसी बच्चे को असली चीज ना देकर खिलौना पकड़ा दें और वो उसी में खुश हो जाए।
हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इसी खिलौने वाले रूपक से ही शुरू करते हैं। आचार्य जी किन चीजों को कह रहे थे खिलौने?
देखिए, उनका इशारा मुख्य रूप से उन कर्मकांडों की तरफ था जिन्हें हम अक्सर बहुत महत्व देते हैं।
जैसे कि?
जैसे गंगा स्नान हो गया, सत्यनारायण की कथा सुनना, मंदिरों में पूजा पाठ करना। उनका तर्क ये था कि ये सब अपनी जगह ठीक है, पर ये खिलौने तब बन जाते हैं जब हम इन्हें ही धर्म का मतलब अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं
और असली उद्देश्य भूल जाते हैं।
हाँ बिल्कुल। और वो असली उद्देश्य क्या है उनके अनुसार?
क्या था वो उद्देश्य?
दो मुख्य बातें थी, एक तो पाप कर्मों से डरना यानी एक नैतिक जीवन जीना, और दूसरा श्रेष्ठ कर्म करना मतलब समाज और खुद की उन्नति के लिए कुछ सक्रिय करना। पर होता क्या है कि ये कर्मकांड अक्सर एक आसान रास्ता सा दिखा देते हैं।
अच्छा, कैसे?
भाई गंगा नहा लो, सारे पाप धुल गए, या कथा सुन ली तो बैकुंठ पक्का हो गया। तो जब मुक्ति और स्वर्ग इतने सस्ते में मिलने का आश्वासन मिल जाए तो फिर त्याग, बलिदान, सेवा जैसे जो कठिन आध्यात्मिक प्रयास हैं,
उनकी जरूरत कौन महसूस करेगा फिर?
सही बात है, यहीं पर उनकी आलोचना थी। ध्यान रहे कर्मकांडों की नहीं बल्कि उनके इस तरह के सरलीकरण और दुरुपयोग की।
ये वाकई सोचने वाली बात है। उन्होंने एक और काफी सशक्त उपमा दी थी अध्यात्म की, फूली हुई लाश।
जी,
सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ये, पर इसका अर्थ क्या था?
ये उपमा असल में बाहरी भव्यता और अंदर के खोखलेपन का जो विरोधाभास है उसे दिखाती है। जैसे कोई शरीर फूलकर बहुत बड़ा दिखे पर उसमें जान न हो, प्राण न हो। आचार्य जी कह रहे थे कि आजकल धर्म के नाम पर देखिए 14-14 मंजिल के मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े अखंड कीर्तन हो रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं। मतलब ये बाहरी तामझाम तो बहुत है
लेकिन अंदर,
लेकिन जो अध्यात्म की आत्मा है, उसका जो प्राण तत्व है, वो कहीं गायब हो गया है।
तो मतलब सारा ध्यान बस बाहरी दिखावे पर चला गया है, अंदर क्या हो रहा है उस पर नहीं। ये तो एक तरह का भ्रम हुआ ना?
बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा खतरा है, रूप और सार के बीच का भ्रम। हम भव्य आयोजन देखते हैं तो लगता है अरे वाह, अध्यात्म तो खूब फल फूल रहा है, पर असल में हो सकता है उसकी आंतरिक ऊर्जा ही खत्म हो चुकी हो।
और शायद इसी पृष्ठभूमि में हमें आचार्य जी के खुद के जीवन को भी देखना चाहिए। उन्होंने तो गायत्री उपासना के लिए बहुत कठोर साधना की थी।
हाँ बिल्कुल, 24 साल तक। आप सोचिए, रोजाना 6 घंटे जप, खाने में केवल जौ की 2 रोटी और छाछ, जमीन पर सोना, नमक शक्कर तक छोड़ देना।
बाप रे,
ये उनका समर्पण था। और शायद इसी गहरे अनुभव के कारण उन्हें तब बहुत निराशा होती थी जब लोग उनके शिविरों में या अनुष्ठानों में बहुत ही मतलब सतही इरादों से आते थे।
अच्छा, जैसे किस तरह के इरादे?
अरे, कोई उसे धर्मशाला समझकर आ गया कि सस्ता ठिकाना मिल जाएगा, कोई मुफ्त भोजन के लिए अन्य क्षेत्र समझ बैठा, कोई बस घूमने फिरने के इरादे से आ गया सैलानी बनकर, या फिर कोई जैसे संतान प्राप्ति है या कोई और दुनियावी मसला उसका तुरंत समाधान चाह रहा। उन्होंने एक व्यक्ति का जिक्र भी किया था जिसने साफ साफ कहा कि भाई मुझे अनुष्ठान वगैरह से मतलब नहीं, मैं तो बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी स्त्री को संतान नहीं हो रही।
ओहो,
तो ये सब देखकर उन्हें पीड़ा होती थी कि लोग अध्यात्म को कितना सस्ता समझने लगे हैं।
तो वो क्वालिटी मतलब गुणवत्ता वाले साधकों पर जोर देते थे, भीड़ पर नहीं।
निश्चित रूप से, उनका मानना था कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक न्यूनतम तैयारी तो होनी ही चाहिए और नियत से ही होनी चाहिए, वरना ये संभव कैसे होगा, ये सवाल उठता है।
तो अगर ये बाहरी कर्मकांड और ये सतही इरादे समस्याएं हैं, तो फिर आचार्य जी के अनुसार सही रास्ता क्या है, समाधान किधर है?
समाधान एक शब्द में है, आत्मशोधन।
आत्मशोधन,
हाँ, यानी अपने अंदर की सफाई। उनका कहना था कि कोई भी जप, तप, ध्यान या अनुष्ठान करो, उससे पहले ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। जैसे कपड़े को रंगना हो तो पहले उसे धोना पड़ता है ना?
हाँ, मैल निकालना पड़ता है।
बिल्कुल, या जैसे अंगारे पर राख जम जाए तो उसे हटाना पड़ता है, ताकि उसकी आंच महसूस हो, वैसे ही पहले मन की शुद्धि जरूरी है।
उन्होंने षट कर्म का भी जिक्र किया था, है ना?
जी, षट कर्म जैसे पवित्रीकरण है, आचमन, प्राणायाम, न्यास, शिखावंदन, पृथ्वी पूजन, ये सब उसी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया के हिस्से हैं। शरीर, मन और इंद्रियों को साधना के लायक बनाने के तरीके हैं ये।
लेकिन ये आत्मशोधन इतना जरूरी क्यों है? मतलब इसके पीछे का तर्क क्या है?
तर्क बहुत सीधा और गहरा है। देखिए, जैसे कच्चा लोहा है,
हाँ,
उसे फौलाद बनाना है तो क्या करना पड़ता है? उसकी अशुद्धियां निकालनी पड़ती हैं।
सही बात है।
या जैसे संख्या और कुचला जैसे जहर हैं, उनको भी दवा बनाने के लिए पहले उनका शोधन करना पड़ता है, उन्हें संशोधित किया जाता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी कई तरह की अशुद्धियों से ढकी हुई है। आचार्य जी इन्हें मलावरण कहते थे। इसमें कषाय, कलमश, पाप, अज्ञान, दुख, ऐसी कई परतें हैं। जब तक ये मैल नहीं हटता, आत्मा की जो असली शक्ति है, उसका प्रकाश है, वो प्रकट नहीं हो सकता। जैसे गंदे शीशे में चेहरा साफ नहीं दिखता,
या जैसे इंजेक्शन के लिए नल का पानी नहीं चलता, डिस्टिल्ड वाटर ही चाहिए होता है।
बिल्कुल सही, वही बात है।
बुद्ध और सेठ वाली कहानी भी शायद इसी बात को समझाती है।
हाँ हाँ, वही कहानी।
जब बुद्ध गोबर से भरा कमंडल लेकर, हाँ, सेठ के पास पहुँचे भिक्षा के लिए,
हाँ,
तो सेठ ने कहा, भगवान पात्र तो साफ लाइए, इस, हाँ, गंदे बर्तन में खीर डालूंगा तो वो भी गोबर हो जाएगी। तो बुद्ध ने यही उपमा सेठ को समझाई कि जैसे गंदे पात्र में खीर बेकार है, वैसे ही अगर मन मैला है, जीवन अपवित्र है, तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी सिद्धि, कोई वरदान, कोई आध्यात्मिक कृपा सब व्यर्थ है। पहले अंदर के बर्तन को साफ करो।
इसका मतलब तो यह हुआ कि दुनिया हमें कैसी दिखती है, ये भी इसी पर निर्भर करता है कि हमारा अंदर का पात्र साफ है या मैला।
बिल्कुल, यही है भीतरी दृष्टिकोण बदलने की बात। अगर हमारा मन साफ है, पवित्र है, तो हमें दुनिया में अच्छाई दिखेगी, सुंदरता नजर आएगी। और अगर मन मैला है, तो हम दूसरों में केवल दोष ही ढूंढते रहेंगे, वो जिसे छिद्रान्वेषण कहते हैं।
सही कहा। इसलिए स्थायी शांति बाहरी हालात बदलने से उतनी नहीं मिलती, जितनी अपने मन को परिष्कृत करने से, अपने अंदर सुधार लाने से मिलती है। शुरुआत खुद से करनी होगी, पहले अपना सुधार।
तो कुल मिलाकर आचार्य जी का संदेश यही है कि सच्चा अध्यात्म बाहरी कर्म कांडों और खिलौनों का खेल नहीं है, बल्कि वो अपने भीतर की शुद्धि यानी आत्मशोधन और एक नैतिक जीवन जीने का नाम है।
जी,
कोई भी दैवीय कृपा पानी हो या आध्यात्मिक उन्नति करनी हो, उससे पहले अपने आंतरिक पात्र को साफ करना सबसे जरूरी है।
बिल्कुल, और इसी विचार से जुड़ा एक प्रश्न शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं।
जरूर।
पूज्य गुरुदेव हमें अपनी आत्मा के अंगारे पर जमी राख हटाने को कहते हैं, तो आज के इस दौर में अगर हम पारंपरिक कर्मकांडों से हटकर भी सोचें, तो वो कौन सी आधुनिक राख हो सकती है? मतलब कौन सी आदतें, कौन से विचार या जीवन शैली की कौन सी सतही बातें जो हमें अपने भीतर की उस आध्यात्मिक अग्नि तक, अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं?
ये सोचने वाला प्रश्न है। इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।